आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। तो आइए स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ पेज नंबर 60 पर चलिए। चैप्टर 7 द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. तो यहाँ कुछ expressions दिए गए हैं जिन्हें हम जब text पढ़ेंगे यानी ये story पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस condition में या किस situation में इन expressions का use हुआ है। आइए हम पहले एक बार इन expressions को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। Blow by blow account, morale booster, relegated to, political acumen, de facto, astute, doctored accounts, give vent to. तो स्टूडेंट्स, अब इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस लेसन का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे हम इस लेसन को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पे, क्वांटम फिजिक्स पे। मतलब आपको इसमें ये लगेगा कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन हो गया है। तो इसमें एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर गायतवांडे। उन्हें एक जगह पे एक लेक्चर देना था, हिस्ट्री के वो प्रोफेसर हैं, तो उन्हें एक जगह लेक्चर देना था, लेकिन रास्ते में उनका हो जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद 2 दिन तक वो एक ही जगह पड़े रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर गायतवांडे को लगता है कि वो किसी और वर्ल्ड में चले गए हैं। और उस वर्ल्ड में जाके उन्हें पता चलता है कि हिस्ट्री बदल चुकी है। विश्वास राव को अब गोली नहीं लगी है, तो ये आप पीरियड ले लीजिए एंग्लो मराठा वॉर का। आपने हिस्ट्री में जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। एंग्लो मराठा वॉर में जब विश्वास राव को गोली लग जाती है, वो मर जाता है, तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पे यानी भारत पे जो होल्ड है, जो आधिपत्य है, वो लगभग लगभग अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो थोड़े थोड़े मोमेंट्स होते रहते हैं जिनकी वजह से उनका और स्ट्रॉन्ग होल्ड होता रहता है, वो हमने हिस्ट्री में देखा ही है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने भी पढ़ा है कि विश्वास राव को गोली लग जाती है, लेकिन जिस दुनिया में प्रोफेसर गायतवांडे जाते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि विश्वास राव को गोली लगी ही नहीं थी, वो तो बस उन्हें छू कर निकल गई। और इस घटना की वजह से, सिर्फ इस एक घटना की वजह से, सिर्फ इस एक मोमेंट की वजह से जो हिस्ट्री है वो चेंज हो चुकी है, और अब मराठा एम्पायर जो है वो फल फूल रहा है, ऐसा प्रोफेसर गायतवांडे को पता चलता है। प्रोफेसर गायतवांडे उस टाइम एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ एक बुक उठाते हैं हिस्ट्री की, उस पर्टिकुलर चैप्टर को देखते हैं और जिसमें ये हिस्ट्री का चेंज्ड मोमेंट लिखा हुआ है, उस वाले पेज को वो फाड़ कर अपनी जेब में रख लेते हैं। प्रोफेसर गायतवांडे जब आसपास देखते हैं तो उन्हें बिल्डिंग्स भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं, और उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो पाते हैं कि वो 2 दिन से बेहोश थे। लेकिन प्रोफेसर गायतवांडे की जेब में अभी भी वो फटा हुआ पन्ना रखा हुआ था, वो पेज रखा हुआ था। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मैटर हो जाता है कि आखिर हुआ क्या, ये दूसरे वर्ल्ड में कैसे पहुंची। तो स्टूडेंट्स, ये था इस स्टोरी का ओवरव्यू, इस लेसन का ओवरव्यू, जिससे हमें समझ में आता है कि ये बड़ा ही एडवेंचरस ही चैप्टर है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ही एडवेंचर हुआ है, इसलिए एप्ट इसका टाइटल है द एडवेंचर। क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली सोच भी नहीं सकते कि किसी और वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर गायतवांडे घूम कर आए हैं किसी और वर्ल्ड में इस चैप्टर में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आप बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनका इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही अहम रोल है। तो आइए अब हम लाइन टू लाइन इस लेसन को अच्छे से रीड करते हैं और समझते हैं। द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलॉन्ग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। There were no industrial townships outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The ghat section that followed was no different from what he knew. The train stopped at car chart only briefly and went on at even greater speed. It rode through Kalyan. तो स्टूडेंट्स, जो जीजा माता एक्सप्रेस है, एक ट्रेन है, वो पुणे से मुंबई जो रूट है उस पर बहुत ही तेजी से चल रही है, इतनी तेजी से कि वो डेक्कन क्वीन को भी पीछे छोड़ दे। पुणे के बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं था, पहला पड़ाव था लोनावाला जो 40 मिनट के बाद आ गया था। इसके बाद पड़ने वाला घाट वाला एरिया भी उनकी यानी प्रोफेसर गायतोंडे की जानकारी से कुछ बाहर नहीं था। किर्जट पर गाड़ी जो रेलगाड़ी थी वो बहुत कम टाइम के लिए रुकी और इसके बाद बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। वो तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही थी और ये करते हुए वो कल्याण को भी अब पार कर चुकी थी। Meanwhile, द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। इनडीड, एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर। He would go to a big library and browse through history books. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. इसी दौरान प्रोफेसर गायतोंडे के दिमाग में भी तेजी से न्यू थॉट्स आने लगते हैं कि मुंबई पहुंचकर उन्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है। उन्हें सीधा लाइब्रेरी में जाना है और वहां पर वो पुस्तकों को बुक्स को पढ़ेंगे जिससे वो समझ पाएंगे कि आज जो सिचुएशन है उस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा गया, क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे हैं एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार, तो वो बुक्स के वाया समझना चाहते हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा गया। उन्होंने ये भी प्लानिंग की कि वो पुणे लौटेंगे और राजेंद्र देशपांडे से मिलेंगे और लंबी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये तो निश्चित था कि अगर उन्हें कोई समझ सकता है और मदद कर सकता है तो वह राजेंद्र देशपांडे हैं और उन्हीं के साथ बैठकर वो सब समझ पाएंगे कि ये जो हुआ है वो कैसे हुआ। That is assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. यही तो है कि इस संसार में राजेंद्र देशपांडे जैसा भी कोई इंसान रहता है, कोई इंसान है। The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. लंबी टनल या सुरंग से निकलने के बाद ट्रेन एक जगह आकर रुक गई। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद। यहाँ एक एंग्लो इंडियन जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो लोगों की टिकट चेक कर रहा था। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 61 पर आइए। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगन। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्क्ड। खान साहिब नाम के उस आदमी ने पूछा, यहाँ से अब ब्रिटिश जो राज्य है, आप राज्य समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश के अंडर जितना भी एरिया है वो शुरू हो चुका है, आप लगता है पहली बार जा रहे हैं। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू बॉम्बे बिफोर। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, एंड खान साहेब, हाउ विल यू गो टू पेशावर। फिर अब ये बोला गया कि जी हाँ, गंगाधर पंत मुंबई में पहले कभी नहीं आए थे। उसने भी हिम्मत करके पूछा कि और खान साहेब, आप पेशावर कैसे पहुंचेंगे। दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनस। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। फिर खान साहेब ने आंसर दिया, ये गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है, आज रात सेंट्रल से मैं फ्रंटियर मेल पकड़ लूंगा। फ्रंटियर मेल यानी जो इंडिया के आगे वाले पोर्शन में जाती है, जैसे नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है जो आज के टाइम में पाकिस्तान बन चुका है। हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट। फिर जो गंगाधर पंत थे उन्होंने पूछा कि वो कहाँ तक जाती है और कौन से रास्ते से जाती है। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, I will reach Peshawar the day after tomorrow. फिर खान साहब रास्ता बताते हैं कि पहले मुंबई से दिल्ली, फिर लाहौर और उसके बाद पेशावर। बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है और मैं परसों तक पहुंचूंगा पेशावर। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener. For in that way, he was able to get some flavor of life in this India that was so different. इसके बाद खान साहिब ने अपने बिजनेस के बारे में काफी कुछ बोलना शुरू कर दिया और गंगाधर बहुत ही आराम से इसे सुनते रहे क्योंकि इस तरह से उन्हें इंडिया में जो लाइफ है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही थी जो उनके लिए भी एक नया अनुभव था। The train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letter GBMR on the side. अब गाड़ी जो है वो जा रही थी आगे सबअर्बन एरिया की तरफ, यानी अर्बन एरिया तो होते हैं शहरी और जो थोड़े बहुत गांव का लुक रखते हैं और थोड़ा बहुत शहर का, ऐसे रास्ते से अब जो रेलगाड़ी है वो गुजर रही थी। नीले रंग के जो लेटर्स हैं वो ले जाए जा रहे थे जिनकी एक और लिखा था GBMR ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। Explain Khan Sahib. See the tiny Union Jack painted on each carriage? A gentle reminder that we are in the British territory. उसके बाद खान साहिब ने कहा Great Mumbai Metropolitan Railway. हर डिब्बे पे छोटा सा ब्रिटेन का झंडा छपा हुआ देखा। इसी बात से हमें ये पता चलता है कि अभी हम ब्रिटिश रीजन के अंदर हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis along with handful of British officers. Ab Dadar se nikal kar rail gaadi jo hai uski speed thodi kam ho gayi lekin wo ruke apne destination par jaakar hi, destination tha unka Victoria Terminus. ये जो स्टेशन था ये बड़ा ही साफ सुथरा था, सारा का सारा स्टाफ एंग्लो इंडियन का था और कुछ पारसीज थे और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे। स्टूडेंट्स, ये वही विक्टोरिया टर्मिनस है जो आज के टाइम में मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे हम कहते हैं वो, पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, तो यहाँ पर आकर वो ट्रेन रुक गई। एज ही एमर्ज फ्रॉम द स्टेशन Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. East India House headquarters of the East India Company. जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आया, गंगाधर पंत ने अपने सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखा। इस पर लिखा हुआ जो अक्षर है वो उन लोगों को पहचान बताते थे जिन्हें मुंबई में जो पहली बार आए हैं और उन्होंने ये निशान कहीं पहले नहीं देखा हो। उस पर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मेनी शॉक्स प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, एट लीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड। येट हियर इट वाज Not only alive, but flourishing. So, history had taken a different turn, perhaps before 1857. How and when had it happened? He had to find out. तो students, इस paragraph को समझाने से पहले मैं आपको एक बार 1857 में क्या हुआ था उसके बारे में बताना चाहूंगी ताकि आप relate कर सकें। तो students, 1857 में first war of independence हुई थी जिसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सिपाही म्यूटनी का भी नाम दिया था। अब इसमें हुआ क्या था कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और इनके साथ मिल गए थे सोल्जर्स। तो ये बेसिकली सोल्जर्स ने शुरू किया था, सिपाहीज ने शुरू किया था और ये धीरे धीरे जगह जगह पर ये म्यूटिनी चली, जगह जगह पर अंग्रेजों का विरोध किया गया। काफी सारे जगहों पर जो उस टाइम के राजा वगैरह थे, जैसे कि झांसी की रानी भी उस टाइम पर ही अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ी थी। तो 1857 जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है इंडियन हिस्ट्री में, जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। तो थोड़ा बहुत अंग्रेजों को समझ में आ रहा था कि यहाँ पर अब इंडियंस को रूल करना इतना आसान नहीं रहा है, इतनी आसानी से हम उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, इंडियंस हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा था कि इंडियंस तो ऐसे ही हैं, ये तो डर जाएंगे, डरपोक हैं, लेकिन सिपॉयज खड़े हो गए थे यहाँ पर। हमने हर धर्म की एक यूनिटी भी देखी थी लोगों में। तो ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को गहरा धक्का पहुंचा था। और उसके अगले साल फिर जो जितनी भी इंडिया की सत्ता है वो सारी सीधा ब्रिटेन की क्वीन के हाथ में दे दी गई थी। यानी क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था, ब्रिटेन की क्वीन ने टेक ओवर कर लिया था इंडिया के सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इन सभी एक्टिविटीज़ को सीधा उनके अंडर किया जा रहा था, उनके नाम पर किया जा रहा था। अब जो कंपनी है उसका इतना कोई अस्तित्व नहीं बचा था, सीधा ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया आ गया था, जिसे हम कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया है ना, 1857 में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बाद जो है वो कंपनी खत्म होनी शुरू हो गई थी। अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं जो हमने पढ़ा है। जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं, जैसे ही वो स्टेशन पर से उतरे, उन्होंने पाया कि उनके सामने वो बिल्डिंग है। तो ऐसे कई झटकों के लिए वो पहले से ही तैयार थे। प्रोफेसर गायतोंडे को इसकी कोई भी आशा नहीं थी। 1857 की वारदातों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बंद कर दिया गया था। इतिहास की पुस्तकों में तो यही लिखा हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा ही हुआ था। लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे ने पाया कि ये तो आज भी यहीं पर है और अच्छे से फल फूल रही है। इस तरह से ये समझा जा सकता है कि 1857 के पहले का जो इतिहास है उसने एक नया मोड़ ले लिया था। कब और कैसे, यही प्रोफेसर गायतोंडे को ढूंढना था। एज ही वॉक्ड अलोंग हॉर्नबाय रोड एज इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। देयर वॉज दो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वूल वर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, imposing offices of Lloyd's, Barclays and other British banks, as in a typical high street of a town in England. जिस समय वो हॉर्न भी कहलाए जाने वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अलग तरह की दुकानों को और ऑफिस बिल्डिंग्स को देखा। वहाँ हैंडलूम हाउस वालों का कोई भी ऑफिस नहीं था या कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, उसकी जगह पर बूट्स और वूलवार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स लगे हुए थे। वहां पर बर्कले और बाकी जो ब्रिटिश बैंक्स हैं उनके ऑफिसेज भी उन्हें दिखाई दे रहे थे, जैसे कि इंग्लैंड में कोई अमीर जगह हो, बिल्कुल वैसा ही वो जगह नजर आ रही थी। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 62 पर आइए। ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर फोर्ब्स बिल्डिंग। अब वो राइट की ओर मुड़े और उन्होंने फॉर्ब्स बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर लिया। वो फॉर्ब्स बिल्डिंग के अंदर आ गए। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। उन्होंने जाकर इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से कहा, प्लीज मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलवा दीजिए। शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, द स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म। She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? अब जो रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने टेलीफोन की सारी जो लिस्ट है उन्हें देखा, स्टाफ की लिस्ट को देखा और उन्होंने बाद में जितने स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें डायरेक्टरी में भी देखा जो उस फर्म की सभी ब्रांचेस से रिलेट करते थे, संबंध रखते थे। उन्होंने फिर अपना सिर हिलाया और बोली, माफ कीजिए, इस नाम का कोई इंसान मुझे ना तो यहाँ और ना ही किसी दूसरी ब्रांच में मिला है। क्या आपको पक्का विश्वास है कि वो यहीं पर काम करते हैं? दिस वॉज अ ब्लो।
not totally expected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born.
ये जो झटका था, ये काफी unexpected था, मतलब ऐसा expect नहीं किया गया था. अगर वो खुद ही इस संसार में मर चुका है, इस दुनिया में मर चुका है, तो इस बात की क्या गारंटी थी कि उसका बेटा अभी जिंदा होगा? क्या पता उसका बेटा अभी जन्मा भी ना हो, यानी अभी उसका बेटा बॉर्न ही ना हुआ हो.
He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall.
उसने बहुत ही आराम से नम्रता के साथ उस लड़की को थैंक यू कहा और बाहर आ गया. उसकी ये विशेषता थी कि वो इस बात की चिंता नहीं करता था कि वो ठहरेगा कहाँ पे, उसे रुकना कहाँ पे है. उसका मेन काम ये था कि वो एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाएगा और इतिहास की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगा. एक रेस्टोरेंट में जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद वो टाउन हॉल की तरफ चल पड़ा.
यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own.
हाँ, उसे ये देखकर तसल्ली जरूर हुई कि टाउन हॉल अभी भी वही था और लाइब्रेरी भी वही थी. वो रीडिंग रूम के अंदर गया और उसने काफी सारी हिस्ट्री की बुक्स के लिस्ट मांगी और उसमें से एक बुक उसने खुद भी लिखी थी.
His five volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka, Volume 2 up to Samudragupta, Volume 3 up to Muhammad Ghori, and Volume 4 up to the death of Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume.
अब उसने 5 किताबें मंगाई थी, उसमें 5 parts में वो किताब थी. पहली किताब में हिस्ट्री थी अशोका के टाइम तक. आपने राजा अशोक के बारे में सुना ही होगा. कलिंग की वॉर के साथ उन्हें बहुत जोड़ा जाता है, साथ ही बुद्धिज्म का इंडिया में प्रचार प्रसार करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही उम्दा किस्म के जिसे राजा कहते हैं वो भी हुए हैं. पाटलिपुत्र से उनका रिलेशन है. तो पहले जो बुक थी उसके अंदर अशोका तक की सारी हिस्ट्री बताई गई थी इंडिया की. उसके बाद जो सेकेंड वॉल्यूम आई उसमें समुद्रगुप्त की हिस्ट्री बताई गई. गुप्ता एम्पायर शुरू हुआ था. समुद्रगुप्त बहुत ही अच्छे वीणा वादक थे, वीणा बजाया करते थे. इंडिया का शेक्सपियर भी कहते हैं उन्हें, जो कि शायद गलत कहते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त शेक्सपियर से पहले आए थे. तो शायद शेक्सपियर को वेस्ट का या ब्रिटेन का या ऐसे वेस्टर्न यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, लेकिन इंडिया में जो समुद्रगुप्त है उन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है. उसके बाद जो तीसरी बुक थी उसमें मोहम्मद गौरी तक का हिस्ट्री दी गई थी. मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना ही होगा. पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 टाइम्स टेरेन के वॉर में हराया था, लेकिन 17 टाइम जो मोहम्मद गौरी है वो जयचंद के साथ मिलके, जो कि एक और पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, उसके साथ मिलके उसने लड़ाई की और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जहाँ से इंडिया में हिस्ट्री बदलनी शुरू हुई. जहाँ से इंडिया में जो फॉरेन लोग हैं वो आकर राज करने लगे थे. यहाँ तक जो हिस्ट्री थी. उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. उसके बाद जो फोर्थ बुक थी उसमें औरंगजेब तक की हिस्ट्री बताई गई है, जो मुगल कालीन एक राजा थे, बड़े ही जिसे कहते हैं कठोर राजा थे. वो काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से डिवीज़न क्रिएट हो गया एक सोसाइटी में. रिलीजियस बेसिस पर वो डिवीज़न उन्होंने क्रिएट किया. आपने शाहजहाँ का नाम सुना होगा, ताजमहल से और रेड फोर्ट से उन्हें लिंक किया जाता है. तो औरंगज़ेब के पिता थे शाहजहाँ और औरंगज़ेब ने अपने ही पिता को एक जगह कैद भी कर दिया था. तो वो बड़े ही क्रूर राजा थे. वहाँ तक की हिस्ट्री को हमने देखा. उसके बाद जो औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मुगल रूलर्स हुए वो बड़े ही कमज़ोर रूलर्स हुए थे. तो यहाँ तक एक हिस्ट्री अलग ही दिशा में चल रही थी. तो स्टूडेंट्स, जो प्रोफेसर गायतोंडे को जो बुक्स मिली थी उसमें ये चार लोगों से रिलेटेड बातें थी, यहाँ तक की हिस्ट्री थी कि कैसे कैसे ये जो अशोका है या फिर समुद्रगुप्त है या फिर मोहम्मद गौरी है या फिर औरंगजेब की डेथ है, वहाँ तक कैसे हिस्ट्री चली थी। अब ये तो पक्का पता चल गया था जब प्रोफेसर गायतोंडे ने वो बुक्स पढ़ी, तो उन्होंने पाया कि ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैं जानता हूँ हिस्ट्री के बारे में। तो ये पक्का हो गया था कि भाई यहाँ तक हिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं आया, यानी बदलाव आया है तो वो औरंगजेब की डेथ के बाद जो हिस्ट्री आई है उसमें आया है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, और वो हिस्ट्री मौजूद थी पाँचवीं किताब में। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। अब जो बुक्स थी उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ा, दोनों तरफ से पढ़ते गए, दोनों ओर से, यानी स्टार्ट से भी एंड से भी वो पढ़ते गए, और उन्हें उस पल का पता चल गया जहाँ पर इतिहास ने मोड़ खाया था, हिस्ट्री चेंज हो गई थी। That page in the book described the Battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew, the young Vishwas Rao. The students, jab unhone Gangadhar Pant ne wo book uthai, wo panchvi book, to usme बात की गई थी बैटल ऑफ पानीपत की, पानीपत की लड़ाई की। पानीपत की लड़ाई में जैसा कि हम जानते हैं कि मराठा जो हैं वो नहीं जीत पाए थे अब्दाली से, लेकिन उस बुक में लिखा हुआ है कि अब्दाली को हरा दिया गया, मराठों ने अब्दाली को हरा दिया, और वो किस तरह से हराया था कि उसे वापस काबुल भेज दिया, और ये लड़ाई लड़ी थी सदाशिव राव भाऊ ने और उनके नेफ्यू, उनके भतीजे विश्वास राव ने। तो इनकी जो वॉर हुई, ये बैटल ऑफ पानीपत हुई, इसमें अब्दाली को हरा दिया गया, इस तरह का उसमें उस बुक के अंदर बताया गया था। द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, रेदर इट एलैबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पावर स्ट्रगल इन इंडिया। Gangadhar Pant read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. उस जो बुक थी उसमें ना बस ये बताया गया था कि पानीपत की लड़ाई कैसे हुई थी, बल्कि इस बात का भी जिक्र था कि मराठा जो युद्ध जीत गए थे और वो किस तरह से उनका जो पल पल का जो अकाउंट कहते हैं ना हम, कि ब्लो बाय ब्लो, यानी एक एक चीज नहीं बताई गई थी उसमें, बस ये बताया गया था कि जो मराठा हैं वो पानीपत की लड़ाई जीत चुके थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो सत्ता के लिए लड़ाई है उसमें बड़े चेंजेस अब आ गए थे। जैसे ही मराठा जीते, अब्दाली भाग गया, हिस्ट्री चेंज हुई, अब सत्ता जो चाहिए, अब सत्ता तो चाहिए ही, यहाँ काफ़ी सारे रूलर्स थे उस टाइम पे, राजा महाराजा रजवाड़े थे, काफ़ी सारे थे, तो अब हर एक ये सोचता है कि भाई सत्ता हमारे हाथ में हो। तो सत्ता के लिए जो लड़ाइयाँ शुरू हुई वो एक अलग ही ढंग से शुरू हो गई थी। गंगाधर पंत ने ध्यान दिया कि जो लिखने की शैली है, राइटिंग स्टाइल है, वो तो बिल्कुल उन्हीं का है, लेकिन फिर भी वो इस बारे में सब पहली बार ही पढ़ रहे थे, उन्होंने पहले इस बारे में पढ़ा नहीं था, तो वो इसलिए भी कंफ्यूज थे, अरे भाई मैंने ही ये किताब लिखी है, मैंने ही सब कुछ इसमें लिखा है, जितना डिटेल से जो भी है वो सब मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता, यानी मैंने तो ऐसा कभी पहले पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख रखा है, ये हो कैसे सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 63 पर आइए। Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. So, अब जो जीत हासिल हुई थी उससे मराठों का हौसला बढ़ गया था और जो नदन इंडिया है उसमें भी उन्होंने अपना होल्ड बना लिया था, यानी अब वो वहाँ पर एक तरह से राज करने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक और रहकर इस सारे डेवलपमेंट को देख रही थी, उसे संदेश मिला और उसने कुछ समय के लिए जो अपना एक्सपेंशन था, जो अपना फैलाव था, जो जगह जगह वो कब्जे कर रहे थे, उस वाले प्रोग्राम को रोक दिया था। फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव हु इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। अब जो पेशवा है उन्हें इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा इससे लाभ हुआ, भाऊ साहेब और विश्वास राव का इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया और उन्होंने 1780 में अपने पिता के वो उत्तराधिकारी भी बन गए। समस्या जिनसे पैदा हो रही थी, दादा साहेब को पर्दे के पीछे दरकिनार कर दिया गया और आखिरकार वो स्टेट की राजनीति से अब छुट्टी ले चुके थे, यानी अब उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई थी स्टेट की राजनीति में, पॉलिटिक्स में। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमन विद वेलर एंड सिस्टमैटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। The company was reduced to pockets of influences from near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals and the Portuguese and the French. अब निराशाजनक रूप से English East India Company अपने सामने एक नया ruler देख रही थी जो था विश्वास राव। उसने और उसके जो भाई थे माधव राव, उन्होंने राजनीतिक चतुराई और वीरता को मिलाया और बड़े ही अच्छे ढंग से पूरे इंडिया पे अपना इन्फ्लुएंस फैला दिया। कंपनी का इन्फ्लुएंस बस मुंबई, कोलकाता और मद्रास तक ही रह गया, जैसे कि उनके यूरोपियन राइवल्स जो थे उस टाइम पर, यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स थे, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के साथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के वही बात आ जाती है दोबारा, आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे जो पुर्तगाली और फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रेंच लोग आए थे, उनका जो वो वैसे तो ब्रिटिशर्स से पहले आए थे लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बड़ा ही लिमिटेड रहा, क्योंकि वो बस ट्रेड ही करते रह गए, इतना ज़्यादा वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलकर इंडिया पर ही कब्जा कर लिया था। तो अब हुआ क्या कि विश्वास राव आ गया उनके सामने, तो उनका तो इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया और जो कंपनी है उसका इन्फ्लुएंस घटता चला गया। कंपनी का इन्फ्लुएंस अब बहुत ही सीमित रह चुका था। For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. They set up their own centers for science and technology. Here, the East India Company saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and exports. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. अब political reason से, यानी राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने मुगल को जो दिल्ली है उसमें उनका इन्फ्लुएंस रहने दिया। इन्फ्लुएंस भी क्या, बस उन्हें गद्दी पर बिठाए रखा, जैसे पपेट होता है ना, जो आप कहोगे वही करेगा, तो इसीलिए बस उन्हें गद्दी पर बिठाए रखा। 19th सेंचुरी में पुणे में जो सही शासन हो रहा था वो तो पुणे से ही हो रहा था, और फिर उन्होंने देखा कि यूरोप में जो तकनीकी रूप से जो विकास हो रहा है उसे बहुत अच्छे से समझा। अब मौका मिल गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भी अपना इन्फ्लुएंस फैला सके, क्योंकि जो मराठास थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर भी सेंटर्स खोले जाएं। अब हुआ क्या कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि चलो ये तो बढ़िया मौका है, हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे। तो फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्हें बस लोकल सेंटर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही एक्सेप्ट किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा था कि हम तो आएंगे और अपना व्यापार भी फैलाएंगे और फिर लोगों पर भी कब्जा कर लेंगे, यहाँ रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लेंगे, इंडिया पर ही हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनके जो हेल्प है वो बस इतनी ली गई कि जो लोकल सेंटर्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बनाएंगे मराठा, उनमें ये हेल्प पहुंचा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। जैसे ही वो आत्मनिर्भर हो गए, तुम भाई जाओ अपने अपने काम करो, तुम्हारी हो गई है छुट्टी, ऐसा मराठों ने एक पॉलिसी अपनाई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बस इतना ही करते हैं, आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ तक इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।